ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ऋषि मुनि कवि कल्पना कविता साकार कहिंदे ने संसार परमात्मा दी कल्पना है। संसार परमात्मा दा फुरना है। संसार उसकी एक ऐसी रचना जैसे कवि दी कल्पना। सारा संसार उस महान शायर संगीतकार दार्शनिक फिलोसफर चिंतक रचयिता कर्ता ये उसकी कविता ही है। ये कविता किधरे बरखा दी बूंदा राहें टपकदी है, किधरे सूरज दियां किरणा देच, किधरे चंद्रमा दी किरणा राहें शीतलता पई वंडदी है, किधरे बदलां दी गर्जन दे राहें ढोल पई वजांदी, किधरे पंछियां दी चह चहाहट, किथे हाथी दी चंगाड़, किथे शेर दी गर्जना। पशु जगती क्यों पंछी जगती क्यों जड़ भी गीत गा रहे है, टकरा रही है पवन दरख्तां नाल, गा रही है गीत, चल रहे है संगीत, कदम कदम ते गीत है संगीत है। महान अवतारी पुरुष के अंदरों जब परमात्मा प्रगट होता है तो परमात्मा उसकी कविता होता है, परमात्मा उसका संगीत होता है, परमात्मा उसका गीत होता है। एक एक अखर विच एक एक धुन विच प्रभु की छाप है, प्रभु का रूप है। इस रूप नो इस छाप नो गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल प्रगट कीता है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने ढंग नाल प्रगट कीता है। ये तो ठीक है कि मुजस्मे दो ने शरीर दो ने दिलां दी धड़कन एक है, स्वासां दी रवानी एक है, मन दे विचार एक ने, जीवन चेतना एक है। सेंस अज दी सफल होई है शरीरक अंगा नूं किसे हद तक ट्रांसप्लेट करन देच, किडनी किसे दी है लगाई किसे नूं गई है, अखां किसे दियां ने लगाइयां किसे नूं गईयां ने, खून किसे दा है दिता किसे नूं गया है। इसे तरीके नाल रब्बी जोत फिलसफा किसे दे अंदर प्रगट होया है पर उसने किसे होर दे अंदर उड़ेल दिता है, किसे होर दे अंदर पा दिता है। धार्मिक जगत विच ऐसा हुंदा रहा है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज का दसवां स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ओ ते अपने बोलां दिते अपने आप नूं कवि करके ही लिखदे ने। कवि ओ वाच एक कवि दे बोल, एक कवि दे बोल। हर रस दी कविता आप दी आत्मा दी डुंगाई चों बाहर प्रगट हो रही है और आप दे अंदर ये शौक कितना प्रबल है कि 52 कवि आप दे नाल रहिंदे ने। जिथे पहुंचदे ने ये शायर नाल ने। कविता दा रूप हर वक्त साकार रूप विच विराजमान हुंदा सी ते कविता दे राहें निरंकार दा ज्ञान निरंकार दा स्वरूप जगत दे सामने स्रोतियां दे सामने चित्रण हुंदा रहिंदा सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप अपनी बाणी विच ऐसा फरमान करदे ने, तारन लोक उधारन भूमे दैत संघारन चंड ओही है। हे प्रभु तू ही चंड का है, हे प्रभु तू ही जगत का कल्याण करने वाला है, हे प्रभु तू ही जगत का उदाहरण करने वाला है। तारन लोक उदाहरण भूमे दैत संघारन चंड तू ही है। काल कला इस कमला हर अद्र सुदा जै देखो उही है। तासमता ममता नमता कवता कव के मन मद गुही है। कीनो है कंचन लो जगत्र में पारस मूरत जाहे छुही है। तासमता ममता नमता कवता कव के मन मद गुही है। हे प्रभु तू ही कविता है तमो गुण दी, तू ही कविता है रजो गुण दी, तू ही कविता है सतो गुण दी। सारे ब्रह्मंड दे रस नूं अवस्थावां नूं इन्हां तीन गुणां विच वंड सकदे आ। हैन ऐसे विचार जो तमो गुणी ने, हैन ऐसे विचार जो रजो गुणी ने, हैन ऐसे विचार जो सतो गुणी ने। है ऐसी जिंदगी जो तमो गुणी है ऐसा जीवन जो रजो गुणी है, और है ऐसा जीवन जो सतो गुणी है। है ऐसी खुराक ऐसा भोजन जो तमो गुणी है रजोगुणी है, कुछ ऐसा भोजन है जो रजोगुणी है, कुछ ऐसी खुराक है जो सतोगुणी है। सुगंध बारे भी ऐसा है, संगीत बारे भी ऐसा है। सियाने कहिंदे ने पश्चिमी संगीत तमोगुणी है, उसनु सुन के मनुख दे मन ठहराव नहीं पैदा होंदा, उछाल पैदा होंदा। संसारिक वासनावां ते जन्म लैंदियां ने, प्रभु दी तमन्ना नहीं पैदा होंदी। कामना रहत हो सकीए इस तरह दियां रुचियां भारतीय संगीत शास्त्रिया विच ते उजागर होंदियां ने, पश्चिमी संगीत विच नहीं। ओ संगीत तमोगुणी है। तो इन्हां तीन गुणां विच असी जगत दे हर स्वरूप नूं, हर अवस्था नूं, हर वस्तु नूं वंड सकदे हां। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, ता समता ममता नमता कवता कव के मन मद गुही है। कहिंदे ने पौंटा साहब विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन कवि दरबार लगाया, पर कवि दरबार ऐसा सिर्फ कवियां नूं ही सदया है, 52 कवि ने, और उन्हां नूं हुक्म ए इत्थे ही कविता दी रचना करो और चार चार पंक्तियां च ओही सुनाओ। ए शौक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे रोम रोम विच सी। पंथ दे वाली खालसे दी साजना करन वाले एक महान पंथ दे जन्मदाता महान क्रांतिकारी योदा जो तलवार दे धनी सन पर ओ कलम दे भी धनी ने। जगत विच देखिया गया तलवार दे धनी कलम दे धनी नहीं सन, और कलम दे धनी तलवार दे धनी नहीं सन। सूरवीर शायर नहीं सन और शायर सूरवीर नहीं सन। संसार विच ऐसा पहली दफा होया है जिदी तलवार मजलूमां दी रक्षा करदी है, जिदी कलम रब्बी संगीत उजागर करके लोगां दे हिरदियां नूं सरशार करदी है, प्रभु चिंतन पैदा करदी है, रब्बी सोच नूं जन्म देंदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस दिन कवियां नूं कहा, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਰਚੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾਗਰ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਕਈ ਪੰਥਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ 52 ਕਵੀ। ਸੋਚ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਕਵੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਵੀ ਸੁਦਾਮਾ, ਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ, ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਮ, ਕਵੀ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਕਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕਵੀ, ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਚੰਦਨ ਨੇ ਜਦ ਸੋਚਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਔਰ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਜੋ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਦਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਿਤਨਾ ਵਕਫਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਚੰਦਨ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਚੰਦਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਇਬਤਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। जद ऐसा हुक्म कीता ते एकदम चंदन नो ख्याल आया, पता चल गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नो मैं कविता पटां ते लिख लई है, वरना इशनान करन दा हुक्म ना कर दे। हाथ जोड़ के कहन लगा महाराज कविता मैं सरवन करा देना, आप इशनान करन दा हुक्म वापस ले लो। अच्छा कविता बनी है? हाँ महाराज बनी है, मैं गलत बयानी कीती है। क्यों कीती है महाराज? दो ख्याल पैदा हुए। प्रथम ते ए इतनी महान रचना है, इतनी उच्ची रचना है, आप शायद इस दे अर्थ ना समझ सको। दूसरा इतनी उच्ची रचना है, इतना उच्चा मैनू इनाम इस फकीरी दर तो प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये दो ख्याल मेरे अंदर पैदा हुए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने चंदन तेरी कविता इतनी अजीम इतनी महान, इस दे अर्थ होने ही चाहिए ने। चौबदार नू आवाज मारी, आखिया धन्ना सिंह नू बुला लिया। धन्ना सिंह धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे घोड़े दी मालिश करदा हुंदा सी, खरखरा करदा हुंदा सी, कास खोद के लियांदा सी। ए अस्तबल दे च मेरे पातशाह दे घोड़े दी ही सेवा करदा सी। फौड़िया नाल लिद चुकरिया सी ते चौबदार पहुंचिया। धन्ना सिंह सतगुरां ने बुलाया है। एकदम विंगी टेढ़ी दस्तार सजा के भजे है दौड़े है। हाजिर होया दरबार दे सजदा करके कहिंदे पातशाह हुक्म। धन्ना सिंह चंदन ने एक अजीम रचना लिखी है कविता, जिस दे अर्थ सानू नहीं आउंदे। तू कर तू कर। धन्ना सिंह ने अपना सिर झुकाया है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मेर भरिया हथ रख दिता है, बख्शिश भरा हथ रख दिता है। ये अनपढ़ सिंह, ये घोड़े दी सेवा करन वाला, ये अस्पतबल दे च रहन वाला हुण सिर उच्चा करके माण नाल कहिंदा है चंदन जी अपनी कविता सुनाओ। तो चंदन ने जड़ी रचना सुनाई है वो ए है, नौ सात तिये नौ सात किए, नौ सात पिए नौ सात पे आए, नौ सात रचे नौ सात बजे, नौ सात पिया पर दायक पाए। जीत कला नौ सातन की, नव साथन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेवर छाए। धन्ना सिंह ने जद एक कविता सुनी, वाकई कविता अपने आप देच महान है। सारे कवि भी विस्माद होए बैठे सन, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी दाद दित्ती। चंदन कहिंदे ने ए अजीम रचना मैं जीवन देच पहली दफा देख रहा। धन्ना सिंह कह रहे ने चंदन तेरी कविता दे अर्थ मैं कविता देच करन लगा। सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना, ती खोड़स बरखन बेवाना, तन खोड़स सिंगार सुहायो, खोड़स मासन में पिए आयो, खोड़स घर को चौपड़ रचयो, खोड़स दाए लाए सुख मचयो, सोई प्यारो खोड़स लायो, खोड़स की बाजी जै पायो, खोड़स कला चंदमुक जोई, हार पाए त्रिय छादत सोई। पहले मैं चंदन दी करुपता दे अर्थ सामने रखा ते धन्ना सिंह ने जो कुछ कहा है फिर समझ दे चाह जाएगा। चंदन कहिंदे नौ सात धीए, नौ ते सत सोलां वरियां दी इस्त्री। नौ सात की है, नौ ते सत सोलां उसने सिंगार कीते। नौ सात पीए, पर उसका पति भी नौ ते सत सोलां वरियां दा। नौ सात पे आए, उदा पति सोलां दिनां बाद घर वापस आया है। नौ सात रचे, नौ सात बदे, नौ सात पिया पर दाय कलाए, शतरंज खेडन लगे, जिस विच सोलां कलां दी बाजी। एदा पति ने जीत लिया, जीत कला नौ सातन की, नौ सातन के मुख अंचल छाए। ओ जो नौ ते सत सोलां वरियां दी इस्त्री है, जे देखिया मैं हार गई, पति जीत गया। नौ सातन के मुख अंचर छाए, उदे मुखड़े दते शर्म दा आंचल आ गया। इस तरह आया मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेवर छाए, जैसे बदलां दी ओट देच कोई चंद्रमा छुप जाए। इस तरह आंचल दी ओट देच उसने अपना मुखड़ा छुपा लिया। एह चंदन ने आखे, इसते अर्थ कर देने धन्ना सिंह। सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना, एक आहिया सिंह सी, मशहूर सी, घोड़े दी सेवा करन वाला सी, घोड़े नाल प्यार करदा सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मुबारक कदमा तो सदके जांदा सी, फिदा सी। पर अज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बख्शिश ते रहमत दिमाग दे कपाट खुले ने, एक महान कवि दी रचना दे अर्थ करन लगा है। और धन्ना सिंह कहिंदे ने, चंदन तेरी कविता दे अर्थ मैं कविता च करन लगा। और ये सारा प्रसंग कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज दिच बकायदा अंकित कीता है, जिस दी कथा हर इतिहासक गुरुद्वारे हर वड्डे गुरुद्वारे च शाम दे समय हो रही है, कई सदियां तो हो रही है। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी दी ए अजीम रचना। धन्ना सिंह इंज बोले, सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना, ती खोड़स बरखन मेवाना, खोड़स खट दस खट छे ते दस सोला, ती खोड़स बरखन बेवाना, सोला वरियां दी ती इस्त्री। तन खोड़स सिंगार सिंह सोहायो, तन दे उते खट दस सोला सिंगार सुभाए मान की थे। खोड़स मासन में पिए आयो, खट दस खोड़स सोला महीनिया तो बाद पति घर दे चाया। खोड़स मासन में पे आयो, खोड़स कला चंदमुख जोई, हार पाए त्रिय छादत सोई, सोई प्यारो खोड़स लायो, खोड़स की बाजी जे पायो, खोड़स कला चंदमुख जोई, हार पाए त्रिय छादत सोई। सोलह कला दी बाजी विछाई पति ने, और ए चौपड़ ए शतरंज जित गया ए सोलह वरियां दा पति, हार गई ए सोलह वरियां दी पत्नी। हारी होई शर्म दी मारी ने आंचल नाल मुखड़ा इस तरह छुपाया, हार पाए त्रिय छादत सोई। मानो बदलां दी ओट दिच चंद्रमा छुप गया। हैरान होया एक दफा ते चंदन, इते घाइया सिंह है, इते घोड़े दी सेवा करन वाला है, पर मेरी कविता दे अर्थ। पर धन्ना सिंह अग्गे बोले, चंदन कविराज मैं थोड़ी कविता दे अर्थ कर दिते, हुण तुसी मेरी कविता दे अर्थ करो, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਚੰਦਨ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਂਕਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਕਵੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਗਿਆ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ। ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੋ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਚੰਦਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਤੀਆ ਮਰੇ ਪੀ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਦਾਏ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦਿਜਰਾਜ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਕਵੀਰਾਜ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਕਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ। ਸੋਚਦਾ ਚੰਦਨ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਜਲ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਚੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੁੱਟ ਮਰਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਹੋਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਵੇ ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫ਼ਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਤੀਆ ਮਰੇ ਪੀ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਦਾਏ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦੁਜਰਾਜ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅਰਥ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਦਾ ਸਵਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਏ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਬੰਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਤੀਆ ਮਰੇ ਪੀ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦਿਜਰਾਜ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਅਜੀਬੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਮਧੁਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੂਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਤੋ ਕੈ लाज हमारी। हे प्रभु, मेरी लज्जा तेरे हाथ दे च। हुण प्रभु दे सरूप ते उना दे नाम, नामां दे च उसदा सरूप। पर जिस शैली नू सतगुर ने अपनाया है, कविता दे जगत दे च कहिंदे ने, इह सब तों पहले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनाया, जिस दी बात दे च नकल होई है। कहिंदे ने इस शब्द तों बार बार फिदा जांदे सन रविंद्रनाथ टैगोर। मैं इस वास्ते उन्हां नूं इस शब्द दे च एक नवीन शैली दिखाई दित्ती, ओ ये है कि सतगुर अगलियां सत्रां दे च जिस अखर नूं पहले अल्फाज दे च शब्द दे च वर्णन करदे ने, सारे शब्दां च सारे अल्फाजां च ओही एक अखर पहले रहेगा। जैसे प्रभु जो तो कै लाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ना नन्ना, नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी। हुण नन्ना चलदा है, नीलकंठ इको शब्द है, नील बसन एक शब्द है। नन्ने तो गल आरंभ कीती, नन्ने ते समाप्ति कर रहे ने। फिर पप्पे नूं लैंदे परम पुरख परमेश्वर स्वामी, परमेश्वर स्वामी एको ही शब्द है। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पावन आहारी। सारी सतर दे पप्पा ही चलदा है। फिर मम्मे नूं लैंदे ने मेरे पातशाह, माधव महाजोत, महाजोत एक शब्द है। माधव महाजोत मद मरदन मान मुकंद मुरारी। फिर सतगुरुदेव जी महाराज नन्ने नूं लैंदे ने, निर्विकार निरजुर निंदराविन निरबिक नरक निवारी। कक्के नूं लैंदे ने किरपा सिंध काल त्रैदर्शी कुकृत प्रणासनकारी। तदे नूं लैंदे ने धनर पान धृत मान धराधर अनबिकार असधारी। हौ मत मंद चरण सरनागत कर गह लेहो उभारी। टैगोर कहा करदे सन एक शब्द विच और इनिया थोड़ियां सतरां विच इतने इनाम, इतने रूप, इतनी बुलंदी, इतनी उड़ारी। ऐ गुरु गोबिंद सिंह, ये तेरे हिस्से आई है, ये तेरे दिमाग दी सोचनी है, ये तेरे हिरदे चो निकलिया होया फुल है, जिस विच इस तरह दी महक बार प्रगट होई है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक जो काव्य शैली च प्रगट होए, उन्हां नाल देश सुत्ता होया जाग पिया। सदियां तो यह गुलाम देश मैं इस वास्ते कि सुत्ता होया सी, इत्थे अफगानी आए, ईरानी आए, अरबियन आए, मंगोल आए, डच आए, पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए। बहुत छोटी छोटी कौमां ने इतने वड्डे देश नूं गुलाम रखिया। एक दो दिन गुलाम नहीं रखिया, 1000 साल गुलाम रखे। कहिंदे ने सुकरात दा ये वाक है कि जिहड़ा देश एक दिन लई गुलाम हो जाए, 1 साल पछड़ जांदा है। जिहड़ा देश 1 साल लई गुलाम हो जाए, वो 100 साल पछड़ जांदा है। और जिहड़ा देश 100 साल वास्ते गुलाम हो जाए, वो हमेशा लई पछड़ जांदा है। ये देश 1000 साल गुलाम रहा है। दूजी गल ये कहिंदा है, जिहड़ा देश 1 दिन लई गुलाम होया है, सुत्ता पिया सी जागया है, आजाद हो गया है। जिहड़ा देश 1 साल लई गुलाम होया है, बीमार सी तंदुरुस्त होया है, आजाद हो गया है। पर जिहड़ा देश 100 साल गुलाम होया है, इत्थे मुर्दा सी, मर चुकिया सी, इत्थे कबर दे विच जा चुकिया सी। कबर विच पए होया इन्हां मुर्दियां विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जान पाई, अपना खून दे के, अपने बच्चियां दा खून दे के, अपने स्वास दे के, अपने प्राण दे के। और उसका ही सदका है कि देश की संस्कृति बच गई, देश दा धर्म बन बच गया। आप दियां उसारी ते तामीरी रुचियां जो आप दी काव्य शैली दे राही प्रगट होंदियां रहियां, उन्होंने नवी फूक मनुखता दे अंदर भर दित्ती, नवा जीवन प्रदान कीता। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहिंदे ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कथे बन कुरान की। पाप ही परपक जाते धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम मसूर, मूर्त न होती जो पै करुणा निधान की। ऐसी बख्शिश भरी जे मूर्ति ना होंदी तो देश दी संस्कृति देश दा धर्म देश दियां पुरानियां परंपरावां फिर सुरजीत नहीं हो सकदियां सन। मरण दे किनारे सन, मर चुकियां सन, इस सुरजीत कीतियां धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। उन्हां दे अपने बोल, उन्हां दा अपना एक शब्द, उन्हां दे उन्हां दी अपनी मंग अपनी चाहत तर्जे जिंदगी बाहर प्रगट होंदी है। बड़ा सोहना वाक है मेरे पातशाह दा, जो किछ इच्छ करो धन की तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। हे प्रभु मैं तेरे कोल धन दी इच्छा नहीं करदा, क्यों? बिना इच्छा तो धन दसों दिशावां तो मेरे कदमां दे चल के अपने आप आ रहे है। मैं क्यों कामना करा, मैं क्यों इच्छा करा? जो किछ इच्छ करो धन की तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। ओ सबरिद्धन सिद्धन पे हमरो नई नैक या ललचावे। योगी जपीश्वर तपीश्वर तप कर देने रिद्धि मिले सिद्धि मिले, हथां च बरकत आवे करामात मिले। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, किसे सिद्धि दी लोड़ नहीं, किसे रिद्धि दी लोड़ नहीं, मेरे मन विच रिद्धियां सिद्धियां दा कोई लालच नहीं, इहदी मैनूं कोई लोड़ नहीं। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक ही आलल चावे। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। तूने तपाने जल धारा करने प्राणायम दी साधना करके उम्र नू लंबा करना, ए मेरे जीवन दी चाहत नहीं है। बहुत छोटी जी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जीवी है, कुल 42 साल संघर्ष रहा है। उस वक्त दे हकूमत दे मुखी औरंगजेब नाल जिंदा रहा है, ओ 92 साल जिंदगी रही गुरु गोबिंद सिंह दी 42 साल। हैरानगी, जब कोई हैरान होके ऐसा पुछदा है तो मैं कहना फुल दी जिंदगी बहुत थोड़ी आउंदी है, बहुत थोड़ी आउंदी है, कंडे दी जिंदगी बहुत लंबी आउंदी है, बहुत लंबी आउंदी है। कंडा खिड़िया ही नहीं ते मुरझाएगा की, फुल खिड़िया है और जो खिड़दा है मुरझांदा है। जिथे जिंदगी है उथे ही खतरा है, जिथे जिंदगी ही नहीं पहले ही कबर च पे है उन्हों की खतरा है। जलदे हुए दीपक नु खतरा है, बुझे हुए दीपक नु की खतरा है, खिड़े हुए फुल नु खतरा है, कंडिया नु की खतरा है। 42 साल जीवे ने पर फुल दी तरह जीवे ने। कहिंदे ने हजार साल कंडिया दी जिंदगी जीण तो बेहतर है एक दिन फुलां दी तरह जीवना। अनंत काल तक कंडिया दी तरह जीवना, उन्हां कंडिया दी तरह जो दूजियां नू भी चुभन ते अपने आप नू भी चुभन, बेहतर है उस फुल दी तरह जीवना। और एक दिन ही जीवना काफी है जो अपने आप नू भी मुअत्तर कर देवे ते दूजियां नू भी मुअत्तर कर दे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, लंबी उम्र दी चाहत नहीं, इस वास्ते प्राणायम करन दी साधना विच मेरा शौक नहीं। मैं जलधारा धोने तपाण विच रुचि नहीं रखदा। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। आखिर थोड़ी कोई चाहत ते होवेगी, क्योंकि कहिंदे ने चाहे अवतार है चाहे संसारी है चाहे संत है चाहे ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਇੱਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ, ਤੋ ਚਲਿਓ ਧਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਤੇ ਆਵੇ, ਔ ਸਬਰਿ ਧਨ ਸਿੱਧਨ ਪੇ, ਹਮਰੋ ਨਈ ਨੈਕ ਹੀ ਆ ਲਲਚਾਵੇ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਕਛ ਜੋਗ ਬਿਖੇ, ਕਰ ਕੌਣ ਇਤੋ ਤਪ ਕੇ ਤਨ ਤਾਵੇ, ਜੂਜ ਮਰੋ ਰਣ ਮੈਂ ਤਜ ਭੈ, ਤੁਮ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਿਆਮ ਅਹ ਬਰ ਪਾਵੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਬਰ ਦੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਚ ਜੂਝਦਾ ਜੂਝਦਾ ਲੜ ਮਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਤਾਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਲ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹਾਉ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੇ ਰਵ, ਹੇ ਸੱਸ, ਹੇ ਕਰਣਾ ਨਿਧ, ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਰਵੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੋਧਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸ਼ੋਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਦਾਨੀ ਬਣੇ, ਕਠੋਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਭਗਤ ਬਣੇ, ਕਾਇਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਣੇ, ਯੋਧਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਤੇ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਲੜਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਰਚਨਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾ ਚਾਰ ਗਈ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ, ਬਤਦ ਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾ, ਚੂੰਕਾਰਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦੰਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ अगर जालम दे कदम रुकदे नहीं, हीले तरले विचार नाल धारा नाल अगर जालम अपने पैरां नूं नहीं रोकदा और अपने पैरां दे थले मजलूमां दे सिर कुचलदा है, रुकदा ही नहीं, तलवार चुकना मैं अपना धर्म समझदा। चूंकारज हमा हील थे दरगुयस्त, हलालस्त बुरदंब शमशेर दस्त। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सिफतो सलाह विच एक मुस्लिम कवि अला यार खां बड़े बुलंद पाया बोल सतगुरु बारे कहिंदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। अगर दुनिया दे चिंतक विचारक दार्शनिक लेखक इंसाफ दी दृष्टि नाल गुरु गोविंद सिंह नूं देखन ते उस नतीजे ते पहुंचन गए कि हे परिपूर्ण परमात्मा, गुरु गोबिंद सिंह दी सिरजना करके तू अपनी करामात नू अपनी कला नू इंतहा ते पुजाया। लाला दौलत राय ने एक किताब लिखी है उर्दू विच, सवाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, सवाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। ये आर्या समाज दे उगे प्रचारक सन। दीवा छे विच भूमिका दे चो कहिंदे ने, ईश्वर दी सारी रहमत खत्म होई जिथे बने गुरु गोविंद सिंह, ईश्वर दी सारी सियाणप जिथे खत्म होई बने गुरु गोविंद सिंह, ईश्वर दी सारी कोमलता जिथे कठी होई बने गुरु गोविंद सिंह, और ईश्वर दी सारी कारीगरी जिथे खत्म होई बने गुरु गोविंद सिंह, ईश्वर दा साहस दलेरी सूरबीरता जिथे कठी होई उसे तो भी बने गुरु गोविंद सिंह। लाला दौलत राय कहिंदे ने, हे प्रभु ए तेरी कारीगरी दा कमाल है कि गुरु गोविंद सिंह जैसा मुजस्मा तू रचे है, सिरजना कीती है, जो हर पहलू दे च मुकम्मल है, जो हर पहलू दे च पूर्ण है। कहिंदे ने घेरे है अज कुछ एहलकारां ने जो उस वक्त दे शहनशाह नाल गूढ़े संबंध रखते सन, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे च भी श्रद्धा रखते सन। हाथ जोड़ के एक कहिंदे ने, महाराज थोड़ी सुलह करा देइए, क्यों किले मसमार हो गए, पिता शहीद हो गए, चार बच्चे भी थोड़े शहीद हो गए, सिंह भी थोड़े सारे मारे गए, हुण थोड़े कोल शस्त्र भी नहीं, हुण थोड़े कोल बस्त्र भी नहीं, हुण थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा भी नहीं, हुण थोड़े जेब विच धन भी नहीं रहा, हुण तुसी कल्ले रह गए, तनहा रह गए, ये असी थानू देख रहे हैं। ऐसी हालत विच साडी श्रद्धा है वक्त दे हुकमरान नाल थोड़ी सुलह करा दे। साहिब कहिंदे ने, सुलह विच जीवना साडा धर्म है, सुलह विच जीवना साडी जिंदगी है, सुलह कुन तबीयत साडा फर्ज है, साडा सुभाव है। फिर महाराज असी सुलह करा देने आ, एक शर्त है कि तुसी हार मन लो असी सुलह करा देने आ। साहिब कहिंदे ने, ए नहीं हो सकता, हार ते हो गई है। महाराज कहिंदे ने, हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है, नहीं मन सकते हार। पर थोड़े कोल ते कुछ भी नहीं, ना शस्त्र ना वस्त्र ना केले ना महल ना धन ना संपदा ना सिंह ना फौज। महाराज कहिंदे ने, बार बार ए ना आखो कुछ नहीं है मेरे कोल, कुछ की है तो मेरे पातशाह दे बोल कलाम परशियन दी कविता, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ठीक है मेरे कोल फौज नहीं, मेरे कोल किले नहीं, मेरे कोल धन संपदा नहीं, पर मेरे हिरदे च खुदा दी याद है, जितने चिर तक वो मेरे हिरदे च बैठा है मैं हार नहीं मन सकदा, क्योंकि ते खुदा दी हार हो जाएगी। ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂ ਦਸਤ ਤੇ ਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ? ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਸੱਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਾਰ ਮੀ ਰਫਤੀ, ਇਹ ਮਾਰ ਮੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ, ਚੇ ਮਰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਸ਼ੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਜਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਸੁਨੀਦ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ, ਦਲੇਰੀ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗੇ ਬਦਗੋ ਗਰ ਅਗਰ ਕਾਸਾ ਏ ਜ਼ਰੀ ਸ਼ਿਕੰਦ, ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਭਾਰੀ ਭਰਖਮ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗੇ ਬਦਗੋ ਗਰ ਅਗਰ ਕਾਸਾ ਏ ਜ਼ਰੇ ਸ਼ਿਕੰਦ, ਕੀਮਤ ਸੰਗ ਨੇ ਫਜ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ਰ ਕਮ ਨਾ ਸ਼ੋਦ। ਪਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਅੰਜਾਮਕਾਰ ਐਸੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ। एक ऐसे पंथ की सिरजना हुई जिस नाल देश की संस्कृति बची और इसनु मेरे पातशाह ने नाम दिता खालसा। खालसा खालसा सिर्फ संत संत होवे कायर हो जाता है, मुथाज होता है। सिर्फ सिपाही सिपाही होवे जालम हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। लखा साधु संतां दे होंदे होया देश गुलाम हो गया क्योंकि कायर सन, कायर सन। मुट्ठी भर सिपाहियां ने देश नो गुलाम कीता क्योंकि दुष्ट सन, जालम सन। सिपाही सिर्फ सिपाही होवे दुष्ट हो जाता है, जालम हो जाता है। ते संत सिर्फ संत पने च रवे कायर हो जाता है। विसाखी वाले दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही नू संत नाल जोड़िया, संत नू सिपाही नाल जोड़िया और नाम रखिया संत सिपाही। ये संत भी है, ये सिपाही भी है, पर इसनू तखल्लुस दिता खालसा। खालसा गुरु नानक दे नौ स्वरूपां ने संत नू जन्म दिता। उस ही संत नू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बना दिता, संत सिपाही। सही मायने च जो संत नहीं ओ सिपाही नहीं हो सकता, दुष्ट होवेगा, जालम होवेगा, डरावेगा, धमकावेगा। पर जो संत ते है सिपाही नहीं, कायर होवेगा, बुजदिल होवेगा। जो कायर है बुजदिल है वो डरदा है, जो जालम है दुष्ट है डरांदा है। ये दोवें अवगुण ऐसे ने कि परमात्मा दे विचकार दीवार खड़ी कर देंदे ने। साहिब कहिंदे ने मैं उसकी तामीर कीती है जो खालसा है। तो खालसे तो मुराद ओ जो संत है सिपाही है, सिपाही है संत है। ये प्रभु नाल जुड़िया होया है, समाज नाल भी जुड़िया होया है और समाज दियां कुरीतियां जुल्म ते तशद्दुद नूं रोकण लई ये सिपाही है। देश तो मिटन लई ए सिपाही है, पर प्रभु तो सदके होण लई ए संत है। प्रभु दा चिंतन करदा है ए संत है। इस तरह दी साजना विसाखी वाले दिन होई जिसका हुण 300 साला साजना दिवस बड़े शौक नाल बड़े उत्साह नाल सारा देश गवर्नमेंट पद्धर ते भी देश पद्धर ते भी समाज पद्धर ते भी धार्मिक पद्धर ते मना रहे है। मुबारकां मुबारकां। ए खालसा हमेशा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बख्शिश दा पात्र बने आ रहे और ए खालसा हमेशा देश धर्म दी तामीर लई अपनी कुर्बानी देंदा रहे।